समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी सायरा मुज्तबा। नमस्कार सायरा।
नमस्कार मनोज, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ आज सवेरे। एंड ऑल्दो वी स्टार्टेड विद अ वेरी वेरी हैप्पी नोट एवरी डे, बट टुडे इज अ वेरी सॉलम डे। यस, द नेशन इज ऑब्जर्विंग गुड फ्राइडे टुडे। द डे रिमाइंड्स अस अबाउट द स्ट्रगल्स एंड सैक्रिफाइसेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, हु वाज अ परफेक्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ कंपैशन एंड वाज आल्सो डिवोटेड टू सर्विंग द नीडी एंड हीलिंग द सिक। Christians across the world are observing Good Friday today with solemn prayers marking the crucifixion of Jesus Christ. Churches are witnessing special services and the way of the cross, with devotees gathering in large numbers. In Thiruvananthapuram of Keralam, prayers are being held at major churches including St. Joseph's Metropolitan Cathedral and St. Mary's Cathedral. The day is being observed in silence and penance as part of the Holy Week that leads up to Easter.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 के पारित होने से देश में जीवन यापन और व्यापार सुगमता को बढ़ावा मिलेगा। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विधेयक विश्वास पर आधारित ढांचे को मजबूत करता है। संसद ने जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी थी। लोकसभा ने इस विधेयक को बुधवार को पारित कर दिया था। ये विधेयक जीवन यापन और व्यापार सुगमता के लिए विश्वास पर आधारित शासन को और मजबूत करने के लिए कुछ कानूनों में संशोधन करता है, ताकि कुछ अपराधों को गंभीर अपराध की श्रेणी से बाहर किया जा सके और उन्हें तर्कसंगत बनाया जा सके। विधेयक छोटे अपराधों को उसके अनुपात में जुर्माने और दंड को संशोधित करने जैसे उपाय लागू करेगा। इसमें 23 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 79 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन का प्रस्ताव है। कुल 784 प्रावधानों में संशोधन प्रस्तावित है। इनमें से 717 प्रावधानों को व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए अपराध की श्रेणी से बाहर किया जा रहा है और 67 प्रावधानों को जीवन यापन में सुगमता लाने के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है।
United Nations Secretary General Antonio Guterres has called for a peaceful settlement to the West Asia conflict. He said that it is high time for the United States and Israel to stop the war that is inflicting immense human suffering and triggering devastating economic consequences. He asked Iran to stop attacking neighboring nations. Speaking to the press outside the Security Council in New York, the UN chief said that every day this war continues, human suffering grows, emphasizing that diplomatic efforts are underway to find a peaceful path forward. Mr. Guterres said that disputes must be settled peacefully and sovereignty and territorial integrity of all member states must be respected. He said that the world is on the edge of a wider war that would engulf the whole West Asia with dramatic impacts around the globe.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापत्तनम में अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट युद्धपोत तारागिरी के जलावतरण समारोह में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस फ्रिगेट के नौसेना में शामिल होने से भारत के पूर्वी तट का रणनीतिक और समुद्री महत्व उजागर होता है। यह आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को मजबूती से आगे बढ़ाते हुए भारतीय नौसेना की युद्धक तत्परता और परिचालन क्षमता को दर्शाती है।
Joint Entrance Examination or JEE Main 2026 Session 2 has commenced and it started since yesterday at around 566 examination centers across India and outside. Subsequent exams are scheduled to be held on 4th, 5th, 6th, 7th and 8th of this month at around 566 examination centers across 304 cities nationwide and 14 cities outside India. The National Testing Agency or NTA is conducting the exam in computer-based test mode for around 11,23,000 candidates. NTA in a statement informed that it has already implemented stringent security protocols to ensure a transparent and incident-free conduct of the exams, as JEE main being a high-stakes examination. Meanwhile, the Embassy of India in Saudi Arabia, through a social media post, informed that the arrangements are in place to ensure a smooth and seamless conduct of the exams. The embassy added that full support to the National Testing Agency and the designated examination center is being ensured to facilitate the process and assist the candidates throughout.
इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने कल रात कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स को 65 रन से हरा दिया। 227 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 16 ओवर में 161 रन ही बना सकी। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 226 रन बनाए। हैदराबाद की ओर से हेनरिक क्लासेन ने सर्वाधिक 52 रन बनाए। हैदराबाद के लिए जयदेव उनादकट ने 3 विकेट लिए। कोलकाता के लिए नीतीश कुमार रेड्डी ने 24 गेंद में 39 रन बनाए और 2 विकेट लिए। नीतीश को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा।
एंड द खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स आर बीइंग हेल्ड इन छत्तीसगढ़। दे आर कंक्लूडिंग टुडे। द क्लोजिंग सेरेमनी विल बी हेल्ड दिस इवनिंग इन रायपुर विद चीफ मिनिस्टर विष्णु देवसाई एज द चीफ गेस्ट। On the occasion, international boxer Mary Kom and noted footballer Bhaichung Bhutia will also be present as special guests. Under the competition, the men's football final will be played today between Chhattisgarh and West Bengal. In the medals tally, Karnataka is leading with 23 gold, followed by Odisha with 20 gold medals in second place and Jharkhand in the third position with 12 gold medals.
अब रुख करते हैं महानगरों के समाचारों का। पहले दिल्ली की खबर। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कल टोडापुर स्थित पुलिस मुख्यालय में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के नए आपदा प्रबंधन वाहनों और महिला नेतृत्व वाले स्कूटर टीमों के बेड़े को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि इन सुविधाओं से आवागमन में उल्लेखनीय सुधार होगा और आपात स्थितियों में त्वरित और अधिक प्रभावी प्रतिक्रिया संभव हो पाएगी। इस अवसर पर सभी ट्रैफिक प्रहरियों, प्रतिबद्ध नागरिक स्वयंसेवकों को भी सम्मानित किया गया। दिल्ली की एक और खबर। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कल डाबरी क्षेत्र से अवैध एलपीजी सिलेंडर भंडारण और रीफिलिंग रैकेट का भंडा फोड़कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से 17 सिलेंडर बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार मामले में आगे की जांच जारी है।
मूविंग ऑन टू चेन्नई, द इलेक्शन कमीशन हैज ऑर्डर्ड द ट्रांसफर ऑफ तमिलनाडु डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जी वेंकटरामन एंड अपॉइंटेड संदीप राय राठौर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अहेड ऑफ द असेंबली पोल्स। द कमीशन इफेक्टेड चेंजेस इन की पुलिस पोस्टिंग्स अक्रॉस द स्टेट। संजय कुमार, अ 1997 बैच आईपीएस ऑफिसर, हैज बीन पोस्टेड एज तांबरम सिटी पुलिस कमिश्नर। Abhishek Dixit has been appointed as Madurai City Police Commissioner and R.V. Ramya Bharati, a 2008 IPS officer, has been posted as Inspector General of Police West Zone based in Coimbatore. The officers have been directed to assume charge and report today at 11 a.m.
Ab Maharashtra Mumbai ki khabar. बम्बई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को मुस्लिम समुदाय के लिए शिक्षा और नौकरियों में 5% आरक्षण रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय अधिवक्ता सैयद एजाज अब्बास नकवी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें 17 फरवरी को जारी सरकारी संकल्प जीआर को चुनौती दी गई थी। इसके अंतर्गत 2014 के उस अध्यादेश को वापस ले लिया गया था जिसमें मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण दिया गया था। याचिकाकर्ता ने सरकार के इस कदम को संविधान का उल्लंघन और मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ बताते हुए दावा किया कि आरक्षण खत्म करने के सरकार के फैसले के पीछे कोई तर्क नहीं है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश आर.आई. छागला और न्यायाधीश अद्वैत सेठना की पीठ ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 4 मई को तय की। महाराष्ट्र की एक और खबर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के प्रस्थान हॉल में स्थित विदेशी मुद्रा विनिमय काउंटरों पर निवासियों को भारतीय रुपए के नोट बदलने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। गुरुवार को मुंबई से जारी एक अधिसूचना में आरबीआई ने कहा कि हवाई अड्डों पर मुद्रा विनिमय गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले मौजूदा ढांचे की समीक्षा के बाद ये सुविधा अनिवासियों के साथ साथ निवासियों के लिए भी विस्तारित की जा रही है। इसके अनुसार यात्री आव्रजन या सीमा शुल्क डेस्क के आगे ड्यूटी फ्री एरिया या सिक्योरिटी होल्ड एरिया में स्थापित विदेशी मुद्रा काउंटरों से भारतीय रुपए के नोट बदल सकेंगे। आरबीआई ने कहा कि मुद्रा विनिमय गतिविधियों पर मास्टर दिशा निर्देश के अनुसार संशोधन किया जा रहा है।
मूविंग ऑन टू बेंगलुरु, द रेल व्हील फैक्ट्री और RWF इन येलाहांका, a key unit of Indian Railways, has achieved record production across all segments in financial year 2025-26. It is a key unit which manufactures wheels, axles and wheel sets. These gains reflect improved capacity, efficiency and process integration, enabling RWF to exceed Railway Board targets despite challenges like fuel supply disruptions. RWF also advanced sustainability through initiatives such as sand reclamation and the use of PNG fuel, along with energy-saving measures like a proposed daylighting system. Another news coming in from Bengaluru. Karnataka Renewable Energy Development Limited, KREDL, has signed MOUs with the University of New South Wales, IIM Bangalore and IISc to set up a Renewable Energy Incubation and Technology Innovation Centre in Bengaluru. The initiative will support around 20 startups annually in sectors like solar, wind energy storage and green fuels, reflecting a shift towards technology-driven growth in clean energy. The program aims to nurture nearly 60 startups over 3 years through incubation, R&D support and market access.
अब पश्चिम बंगाल कोलकाता की खबर। निर्वाचन आयोग ने मालदा के कालियाचक में न्यायिक अधिकारियों के घेराव की जांच के आदेश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA को औपचारिक रूप से जांच सौंपने के लिए पत्र भेजा गया है। पत्र में चुनाव आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार निष्पक्ष जांच आवश्यक है। NIA से अनुरोध किया गया है कि वो तुरंत जांच शुरू करे और जल्द से जल्द अदालत को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपे।
State Revenue, Housing and Information Minister Pongulethi Srinivas Reddy officially launched the integrated Bhoo Bharati portal during a Gram Sabha at Mithayapalli in Rangareddy district. This ambitious project consolidates land, survey and registration services into a single digital platform to ensure transparent and accessible governance. The portal is currently being piloted in 5 mandals including Amanagar and Kusumanchi. After a 45-day evaluation period, it will expand to 1 mandal in every district, eventually covering 70 villages per district with comprehensive surveys. A key feature includes assigning a unique Bhudhar number to every land parcel. The minister emphasized the government's commitment to resolving long-pending Sadbainama issues, noting that new guidelines will benefit those in possession of lands, including areas recently merged into municipalities. So, very good news for the people of Hyderabad over there.
अब महानगरों के मौसम का हाल जानते हैं। पहले दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की बात करते हैं। दिल्ली में आज बादल गरजने के साथ बारिश होने की संभावना है। यहां का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज आसमान साफ रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आज आसमान साफ रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं सायरा से।
Well, Manoj, Chennai, Bangalore, Hyderabad, all three cities will have a partly cloudy sky today. If we talk about the temperatures in Chennai, they will hover between 25 and 37 degrees Celsius, while Bengaluru will also have thunderstorm accompanied with lightning today. Minimum temperature was 22 degrees Celsius, while maximum will be around 33 degrees Celsius. And Hyderabad, along with a cloudy sky, will have haze in the morning, and there's possibility of rain or thunderstorm or dust storm as well in Hyderabad. Temperature in Hyderabad will hover between 24 and 38 degrees Celsius.
और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का. आज 3 अप्रैल है. देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है. 1680 में आज ही के दिन मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ में निधन हुआ.
On this day in 1860, the Pony Express was launched, setting a new standard for delivering mail. Horseback riders left St. Joseph in Missouri and Sacramento in California simultaneously to deliver mail across the country. तो सोचिए 1860 में लोग घोड़ों पे जो है खत जो है पहुंचाते थे.
और 1933 में आज ही के दिन माउंट एवरेस्ट के ऊपर से पहली बार विमान ने उड़ान भरी.
And I take back the listeners to the year 1879, Manoj, when Sofia was liberated from the Ottoman Empire by Russian troops and was named the capital of Bulgaria.
1942 में आज ही के दिन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने अमेरिका पर अंतिम दौर की सैन्य कार्रवाई शुरू की.
On this day in 1992, Mahanadi Coalfields Limited or MCL was a subsidiary of Coal India Limited was formed. Also on this day in 1966, the first Indian-made computer was commissioned in Jadavpur University campus.
जी, 1973 में आज ही के दिन मोबाइल फोन के जनक मार्टिन कूपर ने पहला हैंडहेल्ड मोबाइल कॉल किया.
That's right. और अगर आप लोग सोच रहे हैं जो पहला मोबाइल कॉल था वो एक्चुअली यू नो मार्टिन कूपर वॉज एन इंजीनियर एट मोटोरोला और दिस वॉज हिस्ट्री बिकॉज यू नो इन 1973 आप सोचिए कि कितना बड़ा होता होगा मोबाइल. आज
बहुत बड़ा होता
ऑलमोस्ट इट वॉज अ ब्रिक साइज एक ईंट के बराबर था. इट वॉज कॉल्ड डायना टैग और उसका वजन तकरीबन 1 किलो से ऊपर था अराउंड 1.1 kg. और सोचिए उसका टॉक टाइम सिर्फ 30 मिनट था. आधे घंटे बात करने के लिए आपको उसे 10 घंटा चार्ज करना पड़ता था.
उससे वो डंबल की तरह एक्सरसाइज भी कर लेते होंगे.
एंड इमेजिन इट टुक 10 आवर्स टू रीचार्ज. और आजकल हम लोग देखते हैं कि यू नो क्विक चार्जर्स हार्डली 10 मिनट्स में पूरा फोन चार्ज कर देते हैं. इजंट इट.
और 1981 में आज ही के दिन पहला पोर्टेबल कंप्यूटर ऑसबोर्न 1 पेश किया गया.
And on this day, 1999, International Satellite INSAT-2E, the fifth satellite in INSAT-2 series, was launched from French Guiana.
2017 में आज ही के दिन बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स पहली बार 29,910 के उच्चतम स्तर पर पहुंचा. और अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका आज जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है.
We start with a very, very accomplished actor who has probably redefined Hollywood especially. We are talking about Marlon Brando, widely regarded as one of the greatest and most influential performers in the history of cinema, who received numerous accolades including 2 Academy Awards, 2 Golden Globe Awards, 3 BAFTAs, a Cannes Film Festival Award and a Primetime Emmy Award. Brando is credited with being one of the first actors to bring the Stanislavski system of acting and method acting to mainstream audiences. He came under the influence of Stella Adler in the 1940s. He began his career on stage, where he was lauded for adeptly interpreting his characters. He made his Broadway debut in the play I Remember Mama in 1944 and won the Theatre World Awards for his performances in Candida and Truckline Cafe in 1946. लेकिन मनोज हर हाँ. कोई अगर जो है ब्रांडो को याद करता है आई एम श्योर बिकॉज ऑफ द गॉड फादर. आई थिंक व्हाट अ मार्वलस फिल्म एंड व्हाट यू कैन सी ईच कैरेक्टर इन दैट फिल्म. कहते हैं लाजवाब है,
एकदम लाजवाब है.
सो वी हैव अ स्निपेट ऑफ अ डायलॉग फ्रॉम दैट फिल्म. लेट्स लिसन टू इट.
आई न्यू दैट सैंटाना वाज गोना हैव टू गो थ्रू ऑल दिस एंड फ्रेडो. फ्रेडो वाज I never wanted this for you. I worked my whole life. I don't apologize to take care of my family. And I refused to be a fool.
आज पुण्यतिथि है किशोरी अमोनकर की। उनका जन्म 10 अप्रैल 1931 को बॉम्बे में हुआ था। वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा की प्रमुख गायिकाओं में से एक और जयपुर घराने की अग्रणी गायिका थीं। कोकिल कंठी किशोरी अमोनकर की सुरीली आवाज से देश विदेश के लाखों संगीत रसिक मंत्रमुग्ध हैं। ख्याल, मीरा के भजन, मांड, राग भैरवी की बंदिश, बाबुल मोरा नैहर छूटा जाए पर उनका गायन तो जैसे संगीत रसिकों के दिल में नक्श सा हो गया है। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था।
एक ही संग एक ही संग होते एक ही संग होते जो हम तो।
आज जयंती है सैम मानेकशॉ की। उनका पूरा नाम सैम होर्मूस जी फ्रेम जी जमशेद जी मानेकशॉ है। उनका जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। वे भारतीय सेना अध्यक्ष थे जिनके नेतृत्व में भारत ने सन 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय प्राप्त किया था, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ था। अदम्य साहस और युद्ध कौशल के लिए मशहूर, भारतीय सेना के इतिहास में स्वर्णिम दस्तखत करने वाले सबसे ज्यादा चर्चित और कुशल सैनिक कमांडर पद्म भूषण पद्म विभूषण सैम मानेकशॉ भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। अपने 40 साल के सैनिक जीवन में उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के अलावा चीन और पाकिस्तान के साथ हुए तीनों युद्धों में भाग लिया था। उनके दोस्त उन्हें प्यार से सैम बहादुर कहकर बुलाते थे। आइए सुनते हैं इसी नाम पर बनी फिल्म का संवाद।
सीजीएस की चिट्ठी में 50 जवानों की मांग की गई थी बैरिक्स कंस्ट्रक्शन के काम को तेजी से पूरा करने के लिए। सोल्जर्स नहीं दूंगा सर, हाँ अगर मिस्त्री या मजदूर चाहिए तो मैं एक दो कॉन्ट्रैक्टर्स को जानता हूं जिनकी मैं सीजीएस से बात करवा सकता हूं। वो शायद उन्हें फर्क भी समझा दें कि मिस्त्री क्या करते हैं और सोल्जर्स क्या।
And yes, Manekshaw was awarded the Padma Bhushan, the third highest Indian civilian award in 1968, for responding to the insurgencies in Nagaland and Mizoram. He became the 7th Chief of Army Staff in 1969. Under his command, Indian forces providing them with arms and ammunition to fight against the strong regular army of Pakistan in the Bangladesh-Pakistan War of 1971, which led to the independence of Bangladesh in December 1971. He was awarded the Padma Vibhushan, the second highest civilian award of India, in 1972 for his services to the nation. He was promoted to the rank of Field Marshal in January 1973, the first of the only two officers to be ever promoted to the post, second being K.M. Kariappa. And the nation remembers Sam Manekshaw. And it was a very beautiful film bhi banayi thi ye unke par, isn't it?
और आज जन्मदिन है गजल गायक और पार्श्व गायक हरिहरन का। उनका जन्म 3 अप्रैल 1955 को तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ है। उन्हें वर्ष 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अतिरिक्त 2011-12 में गायक हरिहरन को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। हरिहरन को दिवंगत संगीत निर्देशक जयदेव द्वारा उनकी नई हिंदी फिल्म गमन के लिए अनुबंधित किया गया था। सन 1992 में ए.आर. रहमान के साथ हरिहरन ने तमिल फिल्मों की दुनिया में प्रवेश किया। 1998 में हरिहरन ने अनु मलिक द्वारा संगीतबद्ध फिल्म बॉर्डर के गीत मेरे दुश्मन मेरे भाई के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता।
दिल की कलम से चाहत का हम पहला एहसास लिखेंगे लिखेंगे हम अपनी मोहब्बत का हम अपनी मोहब्बत का नया इतिहास लिखेंगे। आखाए कसम अब जंग नहीं होने पाए और उस दिन का रास्ता देखें
Well, Hariharan, widely regarded as one of the greatest playback singers in Indian cinema. He, in fact, he's also the pioneer, one of the pioneers of Indian fusion music. Because if you remember, Manoj, that with Leslie Lewis, he had released Colonial Cousins, which was fusion music. That was also very popular. But my favorite, of course, there are so many songs, which was very difficult. But that definitely comes to mind in Hariharan's mellifluous voice is this beautiful song from Roja.
रोजा जाने मन तू ही मेरा दिल तुझ बिन तरसे नैना दिल से न जाती है यारे तुम्हारी कैसे तुम बिन जीना।
आज जन्मदिन है जया प्रदा नाहटा का। उनका वास्तविक नाम ललिता रानी राय है। उनका जन्म 3 अप्रैल 1962 को राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में हुआ है। वे एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ हैं, जो तेलुगु और हिंदी सिनेमा के साथ साथ 70 के दशक के उत्तरार्ध, 80 के दशक, 90 के दशक के आरंभ और 2020 के दशक में तमिल फिल्मों में अपने अभिनय के लिए जानी जाती है।
Well considered by many as the most beautiful face to have ever graced Indian cinema, including Satyajit Ray, who called her the most beautiful beautiful face on the Indian screen. I think Jaya Prada ki jab baat hoti hai na Manoj, to mujhe wo Rishi Kapoor ka dhadi bajana jo passionate tha wo yaad aata hai. So let's listen to it.
आम आदमी की पीड़ा और दर्द की गहराई को उकेरने वाले मन्नू भंडारी के उपन्यास महाभोज पर आधारित नाटक खूब लोकप्रिय हुआ था। इस नाटक की शुरुआत की कुछ पंक्तियां, लावारिस लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं, पर विशेषर लावारिस नहीं, उसकी लाश सड़क किनारे पुलिया पर पड़ी मिली, शायद इसीलिए लावारिस लाश का ख्याल आ गया, वरना उसके तो माँ भी हैं और बाप भी, गरीब भले ही हो पर है तो, विश्वास नहीं होता था कि वो मरा हुआ पड़ा है, लगता था जैसे चलते चलते थक गया हो और आराम करने के लिए लेट गया हो। मरे आदमी और सोए आदमी में अंतर ही कितना होता है भला, बस एक सांस की डोरी वो टूटी और आदमी गया। आज जयंती है साहित्यकार मन्नू भंडारी की। उनका जन्म 3 अप्रैल 1931 को भानपुर नगर मध्य प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी के आधुनिक कहानीकार और उपन्यासकार हैं। मन्नू भंडारी को श्रेष्ठ लेखिका होने का गौरव हासिल है। उनकी यही सच है कृति पर आधारित रजनीगंधा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचाई थी। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का गीत।
कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है अनजान।
आज जन्मदिन है प्रभु देवा का। उनका जन्म 3 अप्रैल 1973 को मैसूर में हुआ है। वे एक भारतीय नृत्य कोरियोग्राफर, फिल्म निर्देशक, निर्माता और अभिनेता हैं, जिन्होंने मुख्य रूप से तमिल, हिंदी और तेलुगु भाषा की फिल्मों में काम किया है।
I एंड मनोज, जब भी प्रभुदेवा को डांस करते देखती थी मेरी नानी ना, कहती थी इसकी जिस्म में हड्डी है भी कि नहीं।
बहुत ही शानदार नर्तक हैं।
राइट,
अब समय आपसे विदा लेने का हो गया है, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की।
नमस्कार।
नमस्कार।